दीक्षांत जैसे ही हॉल में आया, रजत ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? माही का शर्म से बुरा हाल था। दीक्षांत ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा, कुछ सीरियस नहीं अंकल, बस हल्की सी चोट लगी है, मैं बैंडेज कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी। दीक्षांत कुछ पलों बाद अपने कमरे में था। उसने आहिस्ता से माही को बेड पर बिठाया और फिर जल्दी से बैंडेज के लिए सारा सामान लेकर आया। उसने माही के पास आकर उसके गुलाबी पैर को अपने हाथों में लेते हुए ध्यान से चोट को देखा और फिर उसे कॉटन से साफ करने लगा। दर्द के कारण माही के होठों से हल्की सी आह निकल गई। उसने जल्दी से अपने दोनों होठों को भींच लिया ताकि फिर से उसकी सिसकी ना निकले, क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्या पता उसके किस एक्शन से दीक्षांत का डेविल मोड ऑन हो जाए, जो इस वक्त ऑफ है। दीक्षांत ने जैसे ही उसकी आह सुनी, वो धीरे से झुकते हुए उसकी चोट पर फूंक मारकर ऑइंटमेंट लगाने लगा। माही हैरान परेशान होकर उसे देख रही थी। उसे याद थी वो पहली मुलाकात, जब दीक्षांत ने उसके घुटने पर बंधी बैंडेज को बड़ी बेरहमी से निकाल फेंका था, जिससे उसकी चोट का दर्द दुगना हो गया था। वो याद करने भर से उसकी आंखों में पानी आ गया था और डर की अजीब सी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ चुकी थी। दीक्षांत ने बैंडेज करने के बाद माही के चेहरे की तरफ देखा। उसकी छोटी सी नाक रोने के कारण लाल हो गई थी। दीक्षांत ने उसे पास की टेबल से पानी का ग्लास उठाकर देते हुए कहा, इतना क्यों घबराई हुई हो, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारा लंच यहीं मंगवा देता हूँ। माही ने वो पानी का ग्लास लेने की कोशिश की, पर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ये देखकर दीक्षांत के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने पहले माही को पानी पिलाया और फिर उस ग्लास को वापस टेबल पर रखते हुए गुस्से में बोला, क्या मेरे ड्रैकुला जैसे नुकीले डरावने दांत निकले हुए हैं या दो सींग निकल आए हैं जो तुम मुझसे इतना डर रही हो? माही ने सहमते हुए ना में सर हिलाया और अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए धीरे से बोली, वो सर, आप मुझसे नफरत करते हैं ना, तो बस इसलिए ये सब थोड़ा खौफनाक लग रहा है। माही की बात सुनकर दीक्षांत को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजरें माही के चेहरे से हटा ली और अब तो उसे वो दिन भी याद आ रहा था जब उसने माही को परेशान किया था, उसे कितना दर्द दिया था। वो झट से बेड से उठते हुए कमरे से बाहर चला गया। माही ने भी उसके जाने के बाद एक चैन की सांस ली और बेड पर आराम से लेट गई, क्योंकि वो सुबह से बहुत ज्यादा थक गई थी। दीक्षांत जैसे ही बाहर निकला तो देखा जानवी टेबल पर लंच लगा रही थी। दीक्षांत ने उसके पास जाकर कहा, भाभी जान, माही का खाना उसके रूम में भिजवा देना, वो नीचे नहीं आ रही है। जानवी ने सिर हिलाकर दीक्षांत के चेहरे को देखा और फिर आगे बढ़कर बोली, आपको क्या हुआ है, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? दीक्षांत ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इंसान से एक बार गलती हो जाए किसी को जानने में और वो उसके साथ बुरा कर दे, तो उसे उस चीज को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर जानवी को हंसी आ गई। उसने दीक्षांत के लिए डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर जगह बनाई तो दीक्षांत मुस्कुराते हुए उस पर बैठ गया। रजत, कल्याण सिंह और अमर भी वहां आ चुके थे। जानवी ने फिर दीक्षांत को खाना परोसते हुए कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बस 5 अक्षर का शब्द सॉरी बोलना होता है। अपनी गलती मानने से इंसान खुद भी शांत हो जाता है और सामने वाले को भी यकीन हो जाता है कि हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास है। अमर ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी साइड वाली चेयर पर बिठाते हुए कहा, ज्ञान की देवी, खाना भी खा लो, कब से बकबकी किए जा रही है? दीक्षांत ने मुंह बनाते हुए कहा, देखना एक दिन जलकर कोयला हो जाएगा। क्या भाभी जान किसी से बात भी नहीं कर सकती हैं? अमर ने बत्ती सी चमकाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं कर सकती, अब चुपचाप अपना खाना ठूसो और निकलो यहाँ से, जब देखो तब मेरी बीवी के पीछे पड़े रहते हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? दीक्षांत कुछ बोल पाता उससे पहले ही अमर ने हंसते हुए कहा, जरूर तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी तो तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम जैसे लंगूर से शादी करने से अच्छा है असली वाले लंगूर से शादी कर ले। दीक्षांत ने दांत पीसते हुए कहा, एक और बार बोला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है मेरे पीछे, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अमर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे तो उसने भी यही कहा था कि अंगूर खट्टे हैं, उसे चाहिए ही नहीं, तुम भी ठीक वैसे ही हो। जानवी ने जल्दी से दीक्षांत की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज अब दोनों खाना खा लीजिए। एक सर्वेंट माही के लिए खाना लेकर गई थी पर उसने देखा कि माही तो सो चुकी है, इसलिए वो खाना वापस ले आई। लंच के बाद अमर और जानवी अपने कमरे में जा चुके थे। जो सर्वेंट माही के लिए खाना लेकर गई थी अब वो डाइनिंग टेबल के बर्तन इकट्ठा कर रही थी। दीक्षांत ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम खाना वापस क्यों ले आई? वो सर्वेंट अपना सर झुकाते हुए बोली, सर, मैडम को नींद आ चुकी है। दीक्षांत वापस माही के कमरे में जा ही रहा था कि अचानक रावत मेंशन के सामने गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मीनाक्षी और महेश लगभग दौड़ते हुए अंदर आए। उन्हें देखकर दीक्षांत का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अब इन पनौती को भी अभी आना था। मीनाक्षी जल्दी से अंदर आई और फिर कल्याण सिंह के पैरों में गिरते हुए बोली, प्लीज कल्याण सिंह जी, मेरी बेटी की बेल करवा दीजिए, हम जेल गए थे पर पुलिस वाले उसकी बेल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे वादा करते हैं हमारी बेटी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाएगी। कल्याण सिंह जल्दी से सोफे से उठते हुए बोले, हमने पुलिस वालों को नहीं कहा है कि आपकी बेटी की बेल ना करें, तो हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। महेश ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज रावत साहब, हमारी इकलौती बेटी है, हमारा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बोलने के साथ ही वो बुरी तरह रोने लगा था। ये देखकर कल्याण सिंह के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, हमें हमारे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मीनाक्षी और महेश दोनों अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर रजत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है, मेरी बहू की जिंदगी जाते जाते बची है, और तुम दोनों चाहते हो तुम्हारी बेटी को बेल दिलवा दें। मीनाक्षी ने जल्दी से कहा, उसे जेल में भेजने से कौन सा ये सब सही हो जाएगा, और आगे से वो ऐसा नहीं करेगी, इसका आश्वासन मैं आपको देती हूँ। मीनाक्षी के बढ़ते बोलों के साथ रजत के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर कल्याण सिंह ने जल्दी से कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से, हम त्रिशा की बेल जल्दी करवा देंगे, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मीनाक्षी ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, और उसके बाद वो दोनों घर से तेज कदमों से बाहर चले गए। ये देखकर रजत ने गुस्से में कहा, कल्याण सिंह, आप हमेशा ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जिसमें हमारे घर के गुनहगार बच जाते हैं? कभी तो अपने अतीत से सीखिए कि आपकी गलतियों की वजह से मैंने अपना क्या क्या खोया है, अब और खोने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। इतना बोलकर रजत गुस्से से वहां से चले गए। कल्याण सिंह गिरने को हुए तो उन्होंने जल्दी से अपने पास रखे सोफे को पकड़ लिया। वो आहिस्ता से अपने कमजोर जिस्म को संभालते हुए सोफे पर बैठ गए। उनकी पलकें झुकी हुई थीं। अक्सर कहते हैं मर्द बहुत सख्त दिल वाले होते हैं, पर कल्याण सिंह अपनी जिंदगी में कभी वो नहीं बन पाए और उसका अफसोस उन्हें हमेशा रहता है।
वहीं दूसरी तरफ अमर के कमरे की बालकनी में अमर फोन पर लगा हुआ खड़ा था। जब उसने मीनाक्षी और महेश को जाते हुए देखा, फिर उसने अंदर एक नज़र जानगी को देखा जो बेड की बेडशीट चेंज कर रही थी। अमर धीमे कदमों से अंदर आया और जानवी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बीवी, अकेले अकेले ही क्यों खुश हो रही हो? जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बेडशीट कितनी खूबसूरत है, मैंने तो आज पहली बार ही इसे कबर्ड में देखा। अमर ने गौर से बेडशीट को देखा, वो एक लैवेंडर कलर की बेडशीट थी जिसके बॉर्डर पर बहुत ही पतली लाइनिंग में वाइट फ्लावर्स बने हुए थे, बाकी पूरी बेडशीट प्लेन थी। अमर की तरफ से कोई जवाब ना सुनकर जानवी जल्दी से उसकी तरफ पलटी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको नहीं अच्छी लगी? अमर ने एक हाथ से जानवी की चिन को पकड़ा और फिर उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, जब इतनी खूबसूरत बीवी मेरे पास हो तो मैं किसी बेजान चीज को खूबसूरत क्यों बोलूं? इतना बोलते हुए अमर ने झुककर उसे किस कर लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं।